आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनविता कुमारी और आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 7, मेरे बचपन के दिन। इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। तो ये पाठ शुरू करने से पहले हम लेखिका के जीवन परिचय को पढ़ेंगे, जिसके लिए आप लोग अपनी अपनी बुक्स के पेज नंबर 67 पर आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पेज नंबर 67 पे पढ़ते हैं लेखिका का परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। तो महादेवी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 यानी 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नाम के शहर में। इनकी जो शिक्षा थी वो इन्होंने प्रयाग में यानी इलाहाबाद में, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, वहां पे की। वहां प्रयाग महिला विद्यापीठ में इन्होंने प्राचार्य के पद पे, ठीक है, यानी जो प्रधानाचार्य होती है, प्रिंसिपल, उसके पद पे रह के इन्होंने वहां काम किया। और लड़कियों की शिक्षा के लिए, उनको कैसे आगे पढ़ाया जाए, लोगों में लड़कियों की शिक्षा के प्रति कैसे जागरूकता लाई जाए, इस चीज को लेके इन्होंने काफी कोशिशें, काफी काम किए। 1987 यानी 1987 में इनका निधन हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। तो महादेवी जी जो थी, ये कौन से समय की थी? छायावाद, जब हमारे साहित्य का छायावाद चल रहा था, उसके प्रमुख लेखकों और लेखिकाओं की जब बात आती है तो महादेवी जी का नाम आगे की पंक्तियों में शामिल किया जाता है। अब इनके कुछ काव्य संग्रह हैं, जो इन्होंने कविताओं का अपना संग्रह इकट्ठा किया है, वो है निहार, रश्मि, नीरजा, यामा या फिर दीपशिखा। और इन्होंने सिर्फ कविताएं ही नहीं लिखी, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सी गद्य रचनाएं भी लिखी हैं। और गद्य में मुख्यतः महादेवी जी क्या लिखती हैं? रेखा चित्र या फिर संस्मरण। जैसे गद्य की भी बहुत सी विधाएं होती है ना, कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, संस्मरण, बहुत सी विधाएं होती हैं। उन्हीं में से जो महादेवी जी की विधा है वो अधिकतर रेखा चित्र या संस्मरण को ही लिखती थी। इनकी कुछ महत्वपूर्ण गद्य रचनाओं के नाम भी दिए गए हैं, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां। जहां बात आती है सम्मान और पुरस्कार की, तो वहां इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे बहुत ही बड़े बड़े पुरस्कार भी मिले हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार से उन्हें पद्म भूषण भी मिला था। पद्म भूषण जो हमारे भारत के सर्वश्रेष्ठ 4 पुरस्कारों में शामिल है, उसमें से एक है। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को ही है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक। देखिए, अब महादेवी जी का जो साहित्य की तरफ रुझान हुआ, जो लेखन में रुचि जागी, लिखने में, पढ़ने में, वो कहाँ से जागी? एक तरफ तो आजादी का जो आंदोलन चल रहा था उस समय, जो आजादी की क्रांति लड़ाई चल रही थी, देश को आजाद करवाने के लिए एक मुहिम चल रही थी, वहीं जो भारतीय समाज में हमारी स्त्रियों की, महिलाओं की जो स्थिति थी, जो दशा थी, इन सारी चीजों ने ही महादेवी वर्मा को लिखने के लिए प्रेरित किया। अब जो ये विधाएं जो महादेवी वर्मा जी ने चुनी, संस्मरण और रेखा चित्र जैसी, ये ऐसी विधाएं थी जो पहले इतनी ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन अब जब से महादेवी वर्मा जी ने इन्हें लिखना शुरू किया तो इनको एक नई ऊंचाई मिली और ये विशेष रूप से लिखे जाने लगे। तो इसीलिए बुलंदियों तक पहुंचाने का, इनको प्रसिद्ध करने का इन विधाओं को श्रेय महादेवी जी को ही जाता है। इनमें समाज के शोषित और पीड़ित वर्ग तो होते ही हैं इनकी रचनाओं में, इसके साथ ही पशु पक्षियों की भी स्थिति, उनके उनको लेकर लगाव, आत्मीयता, सारी चीजें प्रकट होती हैं। भाषा शैली बहुत ही सरल रहती है, आसान रहती है और शब्द चयन, के शब्दों का चयन ऐसा होता है कि दूसरों पे, सामने वाले पाठक पे प्रभाव डाल सके और उसकी आंखों के सामने एक चित्रात्मक प्रस्तुति होती रहे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 68 पे। यहाँ पे पाठ के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। तो ये जो पाठ यहाँ दिया है, मेरे बचपन के दिन, इसमें किस चीज की यादें लिखी हैं महादेवी जी ने? अपने बचपन के ही दिन, कि वो विद्यालय में कैसे पढ़ती थी, उस समय लड़कियों के प्रति समाज के कैसा रवैया रहता था, विद्यालय में उनकी कौन सी सहपाठिन, कौन सी मित्र थी, छात्रावास में, हॉस्टल में उन्होंने कैसा जीवन बिताया, स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, नहीं लिया, कैसे लिया, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 69 पे। शुरू करते हैं पाठ, मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। अब वो क्या बताती हैं? शुरू करती हैं कि बचपन की जो हमारी स्मृतियां होती हैं, यानी बचपन की जो हमारी यादें होती हैं, उनमें एक अलग सा आकर्षण होता है। जब भी हम उसे याद करते हैं तो हमें लगता है कि ये सब चीजें सपने में थी क्या, या वाकई हमारे साथ में थी। परिस्थितियां, स्थितियां, सब कुछ कितनी जल्दी बदल गया। अगर आप भी अपने बचपन की कोई बात, अपने बचपन की दिन याद करेंगे तो एक अच्छा सा मीठा सा अनुभव होगा और आपको लगेगा कि वो सारी चीजें कहाँ चली गई, कहाँ खो गया हमारा बचपन। तो वही लेखिका को भी लग रहा है कि क्या वो सपना था। अब वो शुरू करती हैं अपने परिवार की बात, कि वो जो उनका जन्म हुआ उससे पहले उनके परिवार में कोई लड़की नहीं थी। 200 साल तक इनके परिवार में कोई लड़की हुई ही नहीं थी और तब जाके लेखिका का जन्म हुआ। इसीलिए इनकी बहुत खातिरदारी हुई, लोगों ने बहुत प्यार दुलार दिया, क्योंकि ये कहती हैं कि 200 साल पहले इनके परिवार में जब लड़कियां होती थी, मतलब हमारे समाज का उस समय ये हाल था, लड़कियां होते ही परमधाम भेज देते थे, यानी उन्हें मार दिया जाता था। तो इन लोगों ने ऐसा, इनके बाबा दादा ने ये महसूस किया कि शायद ये हमें श्राप या कुछ मिल गया है जिस वजह से अब हमारे घर में लड़कियां हो ही नहीं रही हैं। तब जो इनकी कुलदेवी थी दुर्गा माता, इन सब लोगों ने उसकी पूजा की और आखिर महादेवी जी का जन्म हुआ। तो लोगों ने इनकी बहुत खातिरदारी, बहुत प्यार दुलार इनके साथ किया। और वो कह रही है बाकी लड़कियों के साथ जो होता है, जैसे मार दिया जाता है या अच्छे से पालन पोषण नहीं होता, ये सब इन्हें नहीं सहना पड़ा। इनके बाबा ने फारसी उर्दू पढ़ी थी, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, लेकिन हिंदी को लेके कोई खास वातावरण इनके घर में नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। अब वो बता रही है कि जब इनके घर में हिंदी का वातावरण नहीं था तो इन्होंने हिंदी कैसे सीखी? अपनी माता से। इनकी माता कहाँ की थी? जबलपुर की। और वो हिंदी जानती थी, हिंदी की जानकार थी। वहीं से इनके परिवार में हिंदी का माहौल बनना शुरू हुआ। वे पूजा पाठ भी करती थी और लेखिका को भी उन्होंने कई चीजें सिखाई और पंचतंत्र जो एक पुस्तक है हिंदी की, वो इन्होंने पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसीलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस, दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा चुकी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी,
गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी, तब उन्होंने मुझको क्रॉस्टवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहां का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था, उस मेस में प्यास तक नहीं बनता था। अब वो कह रहे हैं कि बाबा को मुझे लेके बहुत सपने थे। उन्होंने सोचा इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी क्या होता है? जिसे पुरुषों के लिए विद्वान शब्द इस्तेमाल किया जाता है, महिलाओं के लिए विदुषी, है ना, यानी बहुत होशियार बहुत समझदार बनाएंगे पढ़ा लिखा के। वो हमेशा उस लेखिका को कुछ ऊंचा करता देखना चाहते थे, इसीलिए लेखिका ने अपने घर में पंचतंत्र पढ़ी, संस्कृत पढ़ी, सारी बहुत सी पुस्तकें वो पढ़ती रहती थी। अब उनके जो दादाजी थे वो ये भी चाहते थे कि उर्दू फारसी सीखे, क्योंकि उन्हें खुद भी आती थी। लेकिन लेखिका कहती है कि वो मेरे वश की नहीं थी। जब मौलवी साहब उर्दू पढ़ाने आए तो मैं तो चारपाई के नीचे जा चुकी थी, मैं नहीं पढ़ती थी। फिर मुझे संस्कृत पढ़ाने के लिए पंडित जी को बुलाया गया। माँ भी मेरी थोड़ी बहुत संस्कृत जानती थी, क्योंकि पूजा पाठ करती रहती थी, गीता में रुचि थी, गीता पढ़ती थी, तो संस्कृत उन्हें आती थी। और जब वो पूजा करती थी, संस्कृत पढ़ती थी, तो मैं भी वो सब बैठ के वहां सुनती थी, तो कहीं ना कहीं मुझे हिंदी और संस्कृत समझ में आने लगी थी, लेकिन उर्दू और फारसी मुझे कठिन लगती थी। उसके बाद उन्हें एक मिशन स्कूल में रखा गया, जहाँ का वातावरण उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने रोना धोना करके वहां जाने से मना कर दिया। फिर क्रॉस्टवेट गर्ल्स कॉलेज में उन्हें 5वीं कक्षा में भेजा गया। यहाँ उन्हें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी, सभी मिलजुल के रहते थे, अच्छा सा वातावरण था, एक ही मेस में खाते थे और मेस में इतनी सफाई थी कि वहां प्याज तक नहीं बनता था। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 70। देखिए यहाँ चित्र बना है एक क्रॉस्टवेट गर्ल्स कॉलेज का। वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम चार छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी, मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निदान पंचीवन बोले यही सुना जाता था, प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रजभाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी, तो मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। अब क्या हुआ वो देखिए, वहां का क्या बता रही है कि जब वो क्रॉस्टवेट गर्ल्स कॉलेज में गई, तो वहां का जो छात्रावास था, जो हॉस्टल था, वहां पे हर कमरे में चार चार छात्राएं, चार चार लड़कियां एक साथ रहती थी। तो जब इन्होंने वहां रहना शुरू किया, तो जो इनकी पहली साथी जो मिली इन्हें अपने, जिसे आज हम क्या बोलते हैं, रूममेट, वो कौन मिली? सुभद्रा कुमारी जी। सुभद्रा कुमारी चौहान को आप जानते ही होंगे, बचपन में उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता आपने पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसकी जो लेखिका है वही है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो लेखिका उस समय 5वीं कक्षा में थी और सुभद्रा कुमारी जी 7वीं कक्षा में, यानी वो उनसे 2 साल बड़ी थी। सुभद्रा कुमारी जी तभी से कविताएं लिखती थी और थोड़ी बहुत तुक मिलाने की आदत कहीं ना कहीं महादेवी जी की भी थी। उन्होंने घर में भी ये माहौल देखा था, क्योंकि उनकी माँ भी लिखती थी, पद गाती थी, जैसे मीरा के पद होते हैं ना, सुबह गाती थी मीरा के कोई पद, शाम को गाती थी। और तभी से वो सब सुन के लेखिका के मन में एक लेखन के प्रति रुचि जागी थी और उन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने मीरा के पद ही सुने थे हमेशा से। और जब यहाँ आके उन्होंने देखा कि सुभद्रा कुमारी जी हैं, वो खड़ी बोली हिंदी में लिखती हैं, तो धीरे धीरे महादेवी वर्मा ने भी कोशिश किया कि वो ब्रज भाषा से हटके खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दे। अब क्योंकि सुभद्रा कुमारी जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, सम्मान मिल चुका था, लोग उन्हें जान चुके थे, उनकी तारीफें होने लगी थी, इसीलिए लेखिका को एक झिझक एक शर्म महसूस होती थी उनके सामने और वो उनसे छुप छुप कर ही लिखती थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो सुभद्रा कुमारी को अपनी प्रेरणा मानती थी। एक दिन, आगे पढ़िए, एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिया और एक हाथ से मुझे पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रॉस्टवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे, अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉस वेज से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे, कभी हरिओत जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। अब वो क्या बताती हैं कि जब सुभद्रा कुमारी जी ने उनसे पूछा कि क्या तुम कविता लिखती हो, तो उन्होंने डर के मारे मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं तो नहीं लिखती। उसके बाद सुभद्रा कुमारी ने उनकी तलाशी ली, जहाँ हॉस्टल में लड़कियां अपनी किताबें वगैरह रखती होंगी, अलमारी अलमारी सब टेबल वेबल उनकी चेक करी तो उन्हें बहुत सारे कागज मिल गए जिसमें कविताएं लिखी हुई थी। तो उन्होंने एक अपराधी की तरह कि तुमने झूठ क्यों बोला, है ना, उनका हाथ पकड़ा और कविताएं लेके पूरे हॉस्टल में दिखाई, देखो कितनी अच्छी कविताएं लिखती है। और इस घटना के बाद सुभद्रा जी और महादेवी जी में दोस्ती हो गई और मित्रता इतनी गहरी हो गई कि बाहर जब बाकी लड़कियां खेलती थी तो पेड़ की एक झुकी हुई डाली पे वो दोनों बैठ के आपस में कविता लिखने की तुक मिलाने की कोशिश किया करते थे। वहां पे वो बता रही है कि उस समय जब वो पढ़ती थी तो एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण नाम की, उसमें वो अक्सर अपनी ये तुकबंदियां कविताएं भेज दिया करते थे और वो छप जाती थी। अब आप एक बात देखिए, महादेवी जी ने उस समय की लिखी हुई अपनी रचनाओं को कविता नाम ना देके तुकबंदी नाम दिया है। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि उस समय वो दोनों इतनी अच्छी रचनाएं नहीं करती थी जिसको कविता का नाम दिया जा सके। वो कुछ कुछ शब्दों को मिला के तुक जोड़ लेती थी, इसीलिए वो उसे तुकबंदी कह रही हैं। देखिए हाँ, इनकी महानता प्रकट होती है कि वो अपनी रचनाओं को एक साधारण सी तुकबंदी ही मान रही हैं। फिर वो कहती हैं कि जब पत्रिका में उनकी कविताएं छपने लगी, है ना, फिर वहाँ कवि सम्मेलन होते थे तो वो लोग उसमें भी जाने लगे, उनकी रुचि और बढ़ने लगी। क्योंकि उस समय हिंदी का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा था, गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन कर रखा था, तो हर जगह आजादी का माहौल था, कवि सम्मेलन होते थे, हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि अंग्रेजों के प्रभाव में आके लोग अपने देश की भाषा को ना भूल जाएं। तो जब भी कभी कवि सम्मेलन के न्योते आते थे, जो उनकी क्रॉस वेट की मैडम थी, वो हमेशा सुभद्रा जी को या कभी महादेवी जी को अपने साथ लेकर जाती थी। वहां वो बताते हैं कि हरिओत जी, श्रीधर पाठक जी, रत्नाकर जी, ये सारे अध्यक्ष वहां पे होते थे, कभी कोई होता था कभी कोई, और ये लोग बड़ी बेचैनी से सुनते रहते थे कि कब हमारा नाम पुकारा जाएगा, अब हमारा नाम पुकारा जाएगा अब। अब महादेवी जी बताती हैं कि मुझे अक्सर प्रायः यानी अक्सर प्रथम पुरस्कार फर्स्ट प्राइज मिल जाता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे, यानी जो मेडल्स मिलते हैं कम से कम 100 मिल चुके होंगे। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझे इस कटोरे में खिलाओ। अब क्या होता है, वो बताती हैं कि सुभद्रा कुमारी जी कवि सम्मेलनों में बहुत कम जाना पसंद करती थी, लेकिन महादेवी जी अक्सर जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही वो किसी कवि सम्मेलन में गई और वहां इनाम में उन्हें चांदी का कटोरा मिला जिसपे सुंदर सी नक्काशी की हुई थी। तो उन्होंने सुभद्रा जी को आके दिखाया कि देखो मुझे क्या मिला, और सुभद्रा जी ने खुश होते हुए कहा कि ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बना के इसी कटोरे में मुझे खिलाना। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया, मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला। कहने लगे अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौट कर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। अब क्या हुआ, वो बताते हैं कि वहां आनंद भवन में अक्सर बापू आते थे उन लोगों और
सारी जो छात्राएं थी वो उनसे मिलने जाते थे, अपने जेब खर्च में से जो बच्चों को मिलता है पॉकेट मनी जिसे आज आप लोग कहते हैं, उसमें से वो एक एक आना दो दो आना नहीं, एक पैसे दो पैसे बचा लेते थे अपने देश के नाम पे, और जब बापू आते तो उन्हें वो इकट्ठा करके एक चंदे के रूप में दे देते थे। उस दिन ऐसे जब बापू आए तो बड़ी खुशी खुशी महादेवी जी उन्हें वो दिखाने गई कि ये देखिए मुझे कविता सुनाने पे कवि सम्मेलन में ये एक प्यारा सा कटोरा मिला है। अब बापू ने कहा दिखाओ मुझे, और कटोरा देख के उन्होंने पूछ लिया कि तू देती है इसे, यानी तुम इसे दे दोगी देश के लिए। अब वो महादेवी जी सोचने लगी कि मैं मना कैसे करती, तो उन्होंने वो कटोरा दे दिया और उदास होकर लौट आई और सुभद्रा जी से बोलने लगी कि ये देखिए वो कटोरा तो गया। अब उन्हें उदासी इस बात की, थोड़ी सी उदासी तो थी कि मेरा कटोरा चला गया, लेकिन इससे ज्यादा बुरा उन्हें इस बात का लगा कि कटोरा लेके कम से कम बापू पूछते तो कि आखिर कौन सी कविता थी जिसपे इतना सुंदर कटोरा मिला, लेकिन उन्होंने कविता की तो कोई बात ही नहीं की। और उन्होंने आके अपनी सहेली को यानी सुभद्रा जी को जब बताया कि वो कटोरा चला गया, तो सुभद्रा जी बोलने लगी जैसे हम लोग आपस में बोलते हैं कि और जाओ दिखाने, चला गया चलो कोई बात नहीं, पर खीर तो तुम्हें खिलानी पड़ेगी, चाहे तुम पीतल की कटोरी में खिलाओ फूल की कटोरी में, लेकिन खीर तो अब मैं खा कर ही रहूंगी। ऐसे उन्होंने मजाक मस्ती करके थोड़ा सा महादेवी जी का मूड हल्का करने की कोशिश की। फिर वो कहती हैं कि महादेवी जी कि मुझे कहीं ना कहीं प्रसन्नता हो रही थी कि मेरा पुरस्कार मैंने बापू को दे दिया। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 72। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई, तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिस्सा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी, वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी, मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहां एक उस्तानी जी थी जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर रोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी उसे टोके बिना नहरा जाता था। वाह देसी कवा मराठी बोली, जेबुन कहती थी नहीं उस्तानी जी यह मराठी कवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारी दार साड़ी और वैसी ही ब्लाउज पहनती थी, कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। अब वो बता रही हैं क्योंकि सुभद्रा जी महादेवी जी से 2 साल बड़ी थी, तो वो उनकी शिक्षा पहले पूरी हो गई और वो 12वीं करके वहां से छात्रावास छोड़ के चली गई। तो अब उनके कमरे में एक दूसरी लड़की रहने आई जेबुनिस्सा नाम की, जो कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आई थी, मराठी लड़की थी। अब वो लेखिका के साथ बहुत प्यार से रहती थी, उनका अक्सर बहुत सा काम भी कर देती थी, जैसे कभी डेस्क साफ कर दी, टेबल साफ कर दी, किताबें अच्छे से रख दी, जिस वजह से महादेवी जी को अपने लिए या कविता लिखने के लिए थोड़ा और टाइम थोड़ा और समय मिल जाता था। अब वो क्या कह रही हैं कि जेबुन मराठी थी इसलिए टूटी फूटी हिंदी मराठी शब्दों के साथ मिली जुली हिंदी ही बोलती थी, और वहां जीनत बेगम नाम की एक उस्तानी थी जो जब वो बोलती थी इकड़े तिकड़े लोकर लोकर ऐसे शब्द जो मराठी शब्दों का जब वो इस्तेमाल कर लेती थी तो वो कहीं ना कहीं उसे चिढ़ाने लगती थी कि देसी कौवा मराठी बोली। लेकिन देखिए जेबुन जो थी उसे अपने मराठी होने पे गर्व था, वो उस समय मराठी लोगों की जैसी पोशाक होती थी, किनारेदार साड़ी और ब्लाउज जो आपने देखा ना आज भी महाराष्ट्र के लोग पहनते हैं, वैसी ही पोशाक पहनती थी और बड़े गर्व से कहती थी कि मराठी हूँ तो मराठी ही बोलूंगी। आगे देखिए, उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी, जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवध बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था, और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी, हम एक मैस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। अब वो कह रही है उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी, जैसे आज हो गया ना अपने धर्म के अपने जाति के लोगों को ढूंढना, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, सब लोग मिलके रहते थे, चाहे हिंदी हो मुसलमान हो ईसाई लड़कियां हो सारी लड़कियां, या फिर हिंदी में ही जो अवध के क्षेत्र की लड़कियां थी वो अवधी में बात कर लेती थी, बुंदेलखंड की लड़कियां बुंदेली में बोल लेती थी, लेकिन साथ में मिलके हिंदी उर्दू पढ़ते थे, एक ही प्रार्थना में खड़े होते थे, एक ही प्रार्थना करते थे, एक ही मेस में खाते थे, सारे काम मिलजुल के होते थे, वातावरण काफी अच्छा था। यही आप साइड में देखिए उनके हॉस्टल का भी चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 73। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि जहां जहां रहते हैं वहां जवारा के नवाब रहते हैं, उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे।
उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी, कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बनवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। अब देखिए वो क्या बता रही हैं कि जब तक वो विद्यापीठ आई थी तब तक क्या हुआ, उनके बचपन में वही सब चल रहा था जो पहले चलता था, है ना। वहां पे क्या हुआ वो बता रही हैं कि बचपन में ही उन्हें एक और संस्कार मिले, यानी एक और सीख उन्हें मिली थी। क्या मिली थी कि जहां वो रहती थी वहां एक और परिवार रहता था जो जवारा के नवाब लोग थे। उनकी नवाबी छिन गई थी और अब वो एक बंगले में रहते थे। नवाबी क्यों छिन गई थी, अंग्रेजों की वजह से। और नवाब लोग थे यानी वो मुस्लिम संप्रदाय के थे और लेखिका हिंदू संप्रदाय की। लेकिन वो बताती हैं कि आपस में बहुत ही आना जाना था, बहुत ही प्रेम से रहते थे। और जो बेगम साहिबा थी, मतलब जो महिला थी, वो अपने आप को ताई कहने को कहती थी, इसलिए वो लोग उन्हें ताई कहते थे और उनके बच्चे लेखिका की माँ को चाची जान कहते थे। इतना आना जाना, इतना मेल मिलाप था कि उनके बच्चों का जन्मदिन लेखिका के घर पे और लेखिका और लेखिका के भाई बहनों का जन्मदिन उनके घर पे मनता था। ऐसे ही बड़े प्यार से वो लोग रहते थे। और उनका जो एक बेटा था वो महादेवी वर्मा को कहती थी कि तुम इसे राखी बांधो, क्योंकि बहनों को रक्षाबंधन पे भाई को जरूर राखी बांधना चाहिए। और अपने बेटे को तब तक कुछ खाने भी नहीं देती थी, कहती थी रक्षाबंधन के त्योहार पे जब तक बहन राखी ना बांध ले तब तक भाई को कुछ नहीं खाना चाहिए। और इसीलिए जब वो लोग राखी बांध आते थे तभी वो बच्चा खाता था, और ये लोग उपहार में कुछ पैसे या उपहार राखी बांधने के बदले देते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई, हमारी माँ को दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। अब क्या हुआ वो बताते हैं, जैसे रक्षाबंधन पे ये लोग इंतजार करते थे वैसे ही जब उनके यहाँ मुहर्रम होता था उनके हरे रंग के कपड़े सिलते थे तो ये बच्चे भी अपने लिए हरे रंग के कपड़े बनवाते थे। फिर वो बताती हैं लेखिका के कि मेरे एक छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से क्या कहा कि मेरा नेक ठीक करके रखो, ठीक है। वो नेक लेना आई क्योंकि वो अपने परिवार का हिस्सा मानती थी, और लेखिका की माँ से बोली कि दुल्हन बच्चे को ताई चाची ही 6 महीने तक कपड़े पहनाती है, मैं इसकी ताई हूँ तो मैं इसके लिए कपड़े लाई हूँ, इतना सुंदर बच्चा है मैं इसका नाम मनमोहन रखती हूँ, ठीक है। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यूँ अपने घर में वे अवधि बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था, आज वह सपना खो गया। अब वो बता रही हैं कि वो जो बच्चा जिसको ताई साहब ने कहा कि इसका नाम मैं मनमोहन रखती हूँ, वही प्रोफेसर वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी रहे। यानी वो क्या बता रही हैं, प्रोफेसर मनमोहन वर्मा यानी जो नाम उस ताई ने बच्चे को दिया था वही नाम आगे तक उनका चला। उस समय वो लोग हिंदी, वहां पे हिंदी उर्दू सब सीखते थे लेकिन आपस में अवधि में ही बात करते थे। वो कहती हैं ऐसा वातावरण था कि हम लोग एक दूसरे के बहुत करीब थे, बहुत पास थे, मिलजुल के रहते थे। और जब मैं आज की स्थिति देखती हूँ, लोगों के आज के तरीके देखती हूँ रहने के, तो मुझे लगता है कि वो मेरा सपना ही था। वैसे तो आज शायद कोई रह ही नहीं सकता, वो सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती, यानी अगर वो सच होता, लोग वाकई में ऐसे मिलजुल के रह रहे होते, तो आज हमारे भारत की स्थिति कुछ और होती, हमारा भारत और भी अच्छा होता, और भी बेहतर होता। यानी ये जो सांप्रदायिकता की वजह से, धर्म और जाति की वजह से जो लड़ाई होती है, सब नहीं होते, और हम सभी बड़े प्यार से मिलजुल के रह रहे होते। जैसा कि लेखिका ने समय बिताया, वो दोबारा चाहती हैं कि ऐसा समय देश में काश आ पाता। ठीक है, तो यहाँ आपका पाठ पूरा होता है। जो प्रश्न अभ्यास है उसे हम अगले ऑडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।